घराने में अखलाक के असरात। और इससे पहले कि हम घराने में चलें, हर जो है घराना मेरे ख्याल से एक शख्स और एक से दूसरे शख्स से मिलकर ही ये घराना जो है वो बनता है। तो एक खुद शख्स की ज़ाती ज़िंदगी में अखलाक के क्या असरात हैं, बताइए।
देखिए, खुद अखलाक जो है वो तमाम खूबियों का जो है वो सरचश्मा है, यानी कि तमाम खूबियाँ इससे जन्म लेती हैं। अखलाक से ही तमाम खूबियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, और फ़र्द फ़र्द का अखलाक जो है वो माशरे में अपनी जगह अहमियत का हामिल है। ख़ुद अखलाक जो है उसको अगर हम देखें तो इंसान की ज़ाती जो उसके बयान है, ज़ाती उसका जो किरदार है उसके अंदर, उसकी अहमियत को समझने के लिए हमें उसके रफ्तार और गुफ्तार पर जो है वो निगाह डालनी पड़ेगी। जहाँ तक आपने इस सवाल को मेरे सामने पेश किया है तो इसमें बहुत सारी मसलन शाखें हैं, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूँ कि किस सिमत से इस गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ किया जाए, लेकिन मैं घराने की ही तरफ आता हूँ और इसी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, और अगर आइंदा प्रोग्रामों में कभी मौका मिला तो इस मौजू पर तफसील से गुफ्तगू की जा सकती है।
इंशाल्लाह ज़रूर।
और इसमें बहुत सारे मौजूआत हैं जिस पर इंसान तफसील से गुफ्तगू जो है वो कर सकता है। असरात जो घराना जो है ख़ुद एक समाज का, माशरे का एक जुज़ है घर जो है, और हर खूबी जो है वो घर से जन्म लेती है। और घर के जो अफराद हैं, मैंने एक मरतबा पहले भी एक प्रोग्राम में इस बात का ज़िक्र किया था कि माशरा हो, शहर हो, शहर हो, मुल्क हो, दुनिया हो, इन तमाम की असास व बुनियाद और स्ट्रक्चर जो है वो घर से परवान चढ़ता है, इसकी नशोनुमा जो है वो घर से होती है, और सबसे अहम असरात जो हैं वो घर पर ही पड़ने चाहिए अखलाक के। और जब आप अमली सूरत में अखलाक को घर से शुरू करेंगे तो माशरे में भी उसके असरात पड़ेंगे, शहरों में भी उसके असरात पड़ेंगे, मुल्कों में भी उसके असरात पड़ेंगे, और हमें बहुत सी ऐसी कौमें नज़र आती हैं इस दुनिया के अंदर कि जिनका अखलाक हो, जिनकी रफ्तार, जिनका किरदार जो है वो घरों से ही नशोनुमा पाता हुआ जो है वो हमें नज़र आता है।
बिल्कुल ऐसा ही है।
बहरहाल वक्त की हम नज़ाकत को देखते हुए इस बहस को अपनी बहुत ज़्यादा वसअत नहीं देंगे, बल्कि हम समेटेंगे अखलाक की तरफ, और अखलाक का जो नमूना है वो पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। मैं आने से पहले कुछ अहादीस मुबारका को देख रहा था, और उन अहादीस में एक हदीस जो है वो मुझे नज़र आई कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन से पैगंबर ख़त्मी मरतबा मुखातिब हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए अली, क़यामत के दिन मुझसे यानी मेरे नज़दीक वो फ़र्द होगा कि जिसका अखलाक घर के अंदर अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ जो है वो अच्छा होगा। जिस फ़र्द का अखलाक अपने घर के अंदर अपनी बीवी, अपने बच्चों के साथ अच्छा होगा, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो क़यामत के दिन पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। लेकिन इसके असरात जो हैं, आज जो हम नाहंजारियाई जो है वो देख रहे हैं माशरे के अंदर, आज जो हम बहुत से बहरानों से नबर्द आज़मा हैं, उसकी बुनियाद व असास ये है कि हम अखलाक को एक मौजू के एतबार से जो है उसकी बरसी नहीं करते, उसकी तहकीक नहीं करते। इंसान को अपनी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पर वो बहुत से उमूर को अहमियत देता है, वहाँ पर उसे अखलाक को भी अहमियत देनी चाहिए, यानी जो कुछ वो बोल रहा है, जो कुछ वो सुन रहा है, उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो लागू करे, अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको जो है वो लेकर आए अमली सूरत के अंदर, ताकि इंसान जो है वो इंसान कामिल की सिमत जो है वो अपने कदम को जो है वो बढ़ाए। लिहाजा अखलाक जो है वो इनफरादी एतबार से, इज्तमाही एतबार से जो है वो असास व बुनियाद है तमाम खूबियों की।
बिल्कुल ऐसा ही है। नवीद भाई, एक सवाल जो मेरे जहन में आया और अक्सर इन जुमलात का जो है हम इस्तेमाल देखते हैं हमारे माशरे में बहुत होता है कि ये तो पैदाइशी तौर पर ही बदअखलाक है या ये तो ख़ानदानी तौर पर ही बदअखलाक है, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि कोई भी बच्चा माँ के पेट से अच्छी या बुरी बातें जो है वो सीख कर नहीं आता, रफ्तार रफ्तार माशरे में रहकर लोगों से सीखता है। क्या अखलाक का ताल्लुक हमारे जेनेटिक्स से जाता है या नहीं? हम यहाँ बात करेंगे कि माँ बाप को देख कर या उनके जो रोल मॉडल सामने होते हैं उनको देख कर ही इंसान जो है सीखता है और फिर लागू करता है माशरे में।
बेशक ऐसा ही है। बहरहाल कुछ जगहों पर मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मसलन जैसा कि आपने फरमाया कि जेनेटिकली जो है वो मरबूत हैं, लेकिन हम कुल्ली तौर पर अखलाक को उनसे नहीं जोड़ सकते।
ठीक है।
बल्कि जो हम सीखते हैं, जो हम मसलन जिसकी तालीम हम हासिल करते हैं, जो हम आँखों और कानों से जो है जिन चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, ये चीज़ें ही असल में जो है वो अमली सूरत में उसका इजहार और इंसान के ऊपर बराह रास्त उसके असरात जो हैं वो मुरतब होते हैं। और घर में जो इंसान जो चीज़ें सीखता है वो पहला स्टेज है, वो पहली उसकी जो है वो। बल्कि मैं थोड़ा सा आगे जाऊं और इसको मैं इस तरह से कहूं कि मैंने इससे कबल भी एक प्रोग्राम में इस नुक्ते को जो है वो थोड़ा सा खोलने की कोशिश की थी कि दर हकीकत तरबियत और अखलाक की नशोनुमा जो है वो शिकम मादर से ही होना शुरू हो जाती है। अगर इंसान थोड़ा सा गौर करे और फ़िक्र करे और जो ज़िम्मेदारी मसलन एक नौमौलूद की सूरत में माँ बाप के कांधों पर जो है वो आने वाली है, अगर उसकी प्लानिंग अगर उसका जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीक़े से इंसान जो है मंसूबा बंदी करे, तो दर हकीकत शिकम मादर से ही बच्चे की तरबियत और अखलाक का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें बहरहाल अहादीस भी हैं और डॉक्टर्स की ताकीद भी हैं। इसी तरीके से उलमा जो हैं वो अपने तजर्बात से बहुत सारी चीज़ों को साबित कर चुके हैं और क़ुरान के मौजज़ात भी जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा असरंगेज़ साबित हुए हैं। अगर मेरे पास वक्त हो तो आधे मिनट का, एक मिनट का, तो मैं इस बात को तकमील
आधे मिनट का है
जी हाँ वो कर दूँ, चूँकि एक मौलिम क़ुरान ने इस बात को साबित किया कि अगर कोई माँ जिसके शिकम में जो है वो बच्चा परवान चढ़ रहा है जो 9 महीने उसको रहना है, तो कहा कि अगर माँ मुस्तकीम कुरान से जुड़ी रहे और बच्चे को भी जो है वो कुरान सुनाए, तो कहते हैं ये बात साबित शुदा है कि इस सिलसिले से हटकर अगर कोई बच्चा पैदा हो और कुरान की तालीमात और कुरान की तिलावत के साय में जो बच्चा पैदा हो उसमें और उसमें बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, उसके अखलाक रफ्तार किरदार और हर तरीके से वो बेहतरीन नशोनुमा की सिमत जो है वो बढ़ता है।
अपनी गुफ्तगू में अपने एक नुक्ते की तरफ जाना के नवीद भाई के बच्चे की जो तरबियत है वो बचपन में नहीं बल्कि माँ के कोख से ही शुरू हो जाती है, जब पोषक में मादर में होता है अंदर तब शुरू होती है। तो हम देखते हैं कि उस वक्त जो है दो लोग जो है बच्चे के बहुत नज़दीक होते हैं, एक खुद जो है माँ जिसके जिस्म के अंदर वो वजूद ले रहा है जन्म, वो बच्चा पल बढ़ रहा है, और दूसरा उस बच्चे का बाप जो है। ठीक, तो इन दोनों की क्या जिम्मेदारी बनती है अखलाक के हवाले से, क्योंकि बच्चा उसको सुन रहा है महसूस कर रहा है, तो किस तरह से क्या जिम्मेदारी है उनकी अखलाक के हवाले से बताइए।
ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। दरहकीकत देखा जाए तो माँ बाप जिस तरीके से अल्लाह मियाँ ने एक मर्द और एक औरत को दोनों के लिए इत्मीनान और सुकून का जो है वसीला करार दिया है, इसी तरीके से औलाद जो है उसका समरा है, उस इज़्दवाज का समरा जो है वो औलाद है। ये बहुत भारी ज़िम्मेदारी है माँ बाप पर कि वो इस समरे को मसलन वजूद में लाने के लिए अपनी तमाम तक को दो करें। और चूंकि हमारा जो है दायरा जो है वो इस्लामी तालीमात और कुरान और हदीस की रोशनी में है, इसलिए हम अपने तमाम नाज़रीन को ये बताएंगे कि इसमें बहरहाल बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब इस प्रोग्राम को बहुत शौक़ से देखते हैं, और ख़ास तौर पर किसी नस्ल की तरबियत के लिए जो है इन चीज़ों की से आगही बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल,
मैं यहाँ पर यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि सबसे पहला नुक्ता तो ये है कि तादुल जो है, तादुल अखलाकी अपने अंदर जो है वो पैदा किया जाए, और ख़ास तौर पर मेहरबानी का जज्बा जो है वो शोहर बीवी के साथ और बीवी शोहर के साथ जो है इस राबते को जो है बरकरार रखे। यहाँ पर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें मिलती है जिसमें आप इरशाद फरमाते हैं कि इस हिस को उजागर करने के लिए ज़रूरी है कि शोहर हँसता मुस्कुराता अपने घर के अंदर जो है वो रहे, हत्ता कि जब वो घर में दाखिल हो तो बीवी की ये ज़िम्मेदारी है कि उसे खुश अखलाकी के साथ जो है उसका इस्तकबाल करे और उसके चेहरे पर जो है मुस्कुराहट होनी चाहिए। हत्ता कि मैंने बहुत सी रिवायतों में ये भी पढ़ा है कि बीवी की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये है कि शोहर के आने से पहले अपने आप को आरास्ता करे, यानी कि खुशबू लगाए और अपनी ज़ाहरी शमाइल को जो है वो दुरुस्त रखे ताकि मेहर व मोहब्बत का ये सिलसिला जो है वो कायम व दायम रहे। और ये असरात जो हैं ख़ुद बच्चे पर भी पड़ते हैं, अगर आप जो है वो पाकीज़ा रहेंगी, अगर आप जो है वो तरतमीज़ रहेंगी, अगर आपके अंदर जो है नज़ाफ़त जो है वो पाई जाएगी, दरहक़ीक़त ये असरात औलाद के अंदर भी जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। साथ ही साथ जब इस मेहर व मोहब्बत की कैफियत घर के अंदर पैदा होती है तो इंसान की आँखें, इंसान का कल्ब, इंसान की ज़बान, इंसान के तमाम आज़ा व जवारे इन तमाम चीज़ों को हिस करते हैं, और जब इन ये रवाबते जब एक दूसरे के साथ जो है मुंसलिक होते हैं तो यकीनन जनीन पर इसके बराह रास्त असरात जो है मुरतब होते हैं। मैं एक तहकीक में एक जगह पढ़ रहा था कि जिन घरानों के अंदर माँ बाप जो है वो गुस्से की आलम में रहते हों, जिस घर के अंदर जो है वो लड़ाई झगड़े की कैफियत ज़्यादा हो, और जिस घर के अंदर जो है वो ज़हनी हमाहंगी नहीं पाई जाती हो, वहाँ पर आने वाली औलाद जो है वो बहुत सारे मसाइल का जो है वो शिकार होती है। लिहाजा ये तमाम ज़िम्मेदारी जो है वो माँ बाप पर आती है, यानी कि अखलाक के असरात को अगर हमें घरों के अंदर साबित रखना है, मुस्तकिल बुनियादों पर रखना है, तो इस इलाही ज़िम्मेदारी को हमें अदा करना होगा कि हम मेहर व मोहब्बत के दामन को वसी करें और इस मेहर व मोहब्बत के दामन के साए के अंदर जो है वो ऐसे अखलाक को परवान चढ़ाएं कि जिसके असरात जो है वो बच्चे के साथ साथ जो है घर के अंदर नशोनुमा पाएं, और इसके असरात जो है वो घर के अंदर खुद नज़र आएँ लोगों को। लिहाजा अगर हम इससे बेतफावत रहते हैं, यानी कि इसके अंदर इससे बिल्कुल ला ताल्लुक़ रहते हैं, तो दरहक़ीक़त हमने ज़ुल्म किया अपनी आइंदा आने वाली नस्लों पर। और अगर हम इसको समझते हुए, एहसास ज़िम्मेदारी अदा करते हुए इस इलाही ज़िम्मेदारी को आगे बढ़ाते हैं तो दरहक़ीक़त हमने जो है वो इलाही अहकामात पर अमल किया है। लिहाजा घर के अंदर जो है वो खुशगवार ताल्लुकात वो पहला स्टेप है कि जिसके अंदर जो है वो इंसान को हंसी खुशी, प्यार और मोहब्बत और मेहर को घर के अंदर जो है वो ईजाद करना है।
सवाल मेरा ये था कि हम देखते हैं कि बिल्कुल उल्टा सीन है, घर के बाहर जो हम लोगों से खुश अखलाकी से मिल रहे हैं, बहुत ही प्यार और मोहब्बत से मिल रहे हैं, और अपना एक दूसरा ही जो हम कहते हैं ना इंसान जो हमारे अंदर वजूद रखता है वो दिखा रहे, यहाँ घर में हमने कदम रखा, चिड़चिड़ापन शुरू हो गया, थकन निकालना घर वालों के ऊपर, सारी ये चीज़ें, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप?
बहरहाल ये एक बदतरीन रवैया है, इसको हम एक बदतरीन अखलाकी रवैया कहेंगे, और साथ ही साथ दीन से नाआगाही और इस हवाले से अपने आप को इंसान बाहर अखलाकी तौर पर जो है वो ज़ाहिर करे और घर के अंदर के जो महदे अखलाक होना चाहिए, जहाँ से मसलन ख़ुद माशरे की तरबियत और समाज का एक जो है वो भारी ज़िम्मेदारी जो हमारे घर पर है, कंधों पर हमारे जो है वो आयद होती है, हम उससे लातअल्लुक़ हो जाएं, तो ये बदतरीन सूरत है। मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ اس آپ کے سوال کے ذیل میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے اخلاق کو کہ جو گھر میں بد اخلاقی انسان کرتا ہو ایسے فرد کے لیے جو ہے وہ فرمایا ہے کہ ایسا فرد جو ہے وہ قیامت میں ہم سے دور ہوگا, یعنی کہ ایسے فرد جو ہے وہ ہم سے نزدیک جو ہے وہ نہیں ہوگا. ہم سے نزدیک وہی فرد ہوگا کہ جو اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال, اپنی بیوی, اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے حسن خلق رکھتا ہو, اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مہر و محبت کرتا ہو. چاہے انسان باہر اس پر اخلاقی طور پر, یعنی کہ کچھ یہ کہا جائے کہ کام کا دباؤ یا اس پر سختی کچھ زیادہ ہے, تو کوشش ہی کرے کہ جیسے میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے گھر میں وہ ہستہ مسکراتا داخل ہو, تاکہ اس کو اپنی باہر کی جو تکلیف اور سختی ہے اس کو گھر میں منتقل نہ کرے. کیونکہ گھر میں اگر وہ ان چیزوں کو لے کر آئے گا تو یقیناً ایک گھر جو ہے وہ جنت تو نہیں بن پائے گا لیکن ایک جہنم کی صورت ضرور اختیار کر لے گا. چونکہ اس گھر کے اندر جو ہے بچے بھی ہیں, بیوی بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس اخلاقی فرائض سے وہ بہت دور ہو جائے گا کہ جو اسے گھر کے اندر جو ہے وہ ادا کرنے ہوں گے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشق کرے اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے, اور صحیح کوشش یہاں سے کرے کہ جس طریقے سے وہ باہر سے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ گھر سے باہر لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے, گھر میں بھی اس رویے کو رواج دے تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ اخلاقی اقدار جو ہیں وہ پروان چڑھیں.
بالکل, اور ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ جہنم کی جو آگ ہے وہ پورے گھر والوں کو اپنے لپیٹے میں لے لے. چلتے ہیں, یہاں پر دو سوال ہمارے پاس آئے ہیں اور دونوں سوال ہمارے لیے طاہرہ یوسف بیشتی ہیں کارگل سے. میرے خیال سے بہت اچھی طرح اشارہ کیا ہے کہ جو بچے بہت ہی شرارتی ہوتے ہیں یا شرارتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے, اور کچھ بچے جو ہیں وہ بہت کم بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کس طرح سے ہم بات کریں, ان کا مطلب جو ہے دونوں اخلاق کی طرف ہی جا رہا ہے.
بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے, اور جہاں تک ہمارے آج کے پروگرام کے موضوع کا عنوان ہے, ہم نے جس موضوع کو اپنے آج کے اس پروگرام میں سرنامہ قرار دیا ہے اس سے بھی تھوڑا سا میل کھاتا ہے. میں اپنی ان بہن کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ بچے پھر بچے ہیں, اور ہمیں اخلاق پیغمبر, اخلاق نبی اور اخلاق ائمہ علیہ السلام سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بچوں کو بچوں کی طرح ڈیل کرنا چاہیے, ان کو اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا تعلق اور رابطہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے, چونکہ بہرحال وہ بچے ہیں.
بالکل جی,
اپنے ناظرین کی خدمت میں, خاص طور پر ہماری جن بہن نے
طاہرہ یوسف
جی ہاں یہ سوال کیا ہے, میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بچوں کی جو نفسیات ہے اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے, اور خاص طور پر جو والدین تربیت اولاد کے اندر جو ہے, اور یہ شاید میری آج کی گفتگو کا جو ہے وہ نچوڑ بھی ہو, صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ماں باپ کو اولاد کی تربیت کے اندر.
بالکل,
اور اگر جہاں پر اولاد کی تربیت میں صبر و تحمل جہاں آئے گا تو ہم بہت سارے مسائل کو جو ہے وہ حل کرنے پر قادر ہو جائیں گے. لیکن اگر تربیت اولاد کے اندر ہم نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑا تو بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں.
بالکل,
لہٰذا ضروری ہے کہ اگر بچہ نسبتاً تھوڑا شریر ہے تو یہ اس کی مثلاً فطری تقاضا ہے اس کے بچپنے کا, اور اس قسم کے بچوں کو آپ اسی طرح ڈیل کریں جس طرح کہ وہ نشو و نما پا رہے ہیں, اور اس کے اندر تھوڑا سا شاید آپ کو محنت زیادہ لگے لیکن آپ اس محنت کو جو ہے وہ قبول کریں اور وقت دیں بچے کے لیے, اور خاص طور پر جو ہے وہ میں مجھے یہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے, میں ان کو اپنے بچے کو لے کے گیا کہ یہ مثلاً کھانا نہیں کھاتا, بچہ جو ہے وہ کھانا بہت کم کھاتا ہے, تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس میں کوئی
گھبرانے
کی بات نہیں ہے, اگر وہ چار دستوپات چل کر بچہ کھانا کھائے تو آپ کو ویسے چار دستوپات چل کر اس کو کھانا کھلانا چاہیے. अगर मसलन वो इस तरह खुश होकर खाना खा लेता है तो इस तरह आप उसको खाना खिलाइए,
जो रवश उसे पसंद है,
पसंद है उस तरीके से उसको जो है ना खाना खिलाएं, चूंकि आपका बच्चा जो है वो 9-10 महीने का है, लिहाजा उस तरीके से आप उसको, या उससे थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो उसको उसी तरीके से, लिहाजा ज़रूरी है कि माँ बाप यहाँ पर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और बच्चों की तरबियत के अंदर जो है वो उन्हीं जैसा सलूक करें जैसा वो चाह रहे हैं। लेकिन इसके अंदर फ़र्ज़ करें कि अगर बहुत ही कोई मसलन ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जिसके अंदर इंसान कुछ समझ में उसके नहीं आता, तो माशाल्लाह आजकल जो है वो ऐसे अफराद और ऐसे माहिरीन मौजूद हैं कि जो आपको इस हवाले से सही गाइडलाइन जो है वो दे सकते हैं।